और एक और खूबसूरत सूरत हमारे सामने है, सूरत तौहा। दोनों का रब थोड़ा सा तो मैं आपको पीछे बता भी चुकी हूँ, एक दो बातें और नोट कर लीजिए। और वो क्या कि सूरत तौहा वो थी जिसने हजरत उमर के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दी। सूरत तौहा को सुनकर हजरत उमर के दिल के अंदर ईमान की जो जोत जली, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे भी दिलों में अपनी मोहब्बत का बीज डाल दे। और हजरत उमर तो कुफर छोड़कर इस्लाम पे आ गए, अल्लाह हम कुफर पे तो नहीं है, हमें गुनाहों को छोड़कर इस्लाम पे ले आ। और इसको सुनने के बाद, इसको पढ़ने के बाद हम भी अपने लिए ये दुआएं करें। और इसी तरह इसके आयात में रिदम बहुत है, इसके अंदर भी कुछ लफ्ज आप खास तौर पे देखेंगे। और आप सूरह तौहा का एक दूसरा नाम रख लीजिए, हजरत मूसा की लाइफ हिस्ट्री, कैसे अल्लाह ताला ने उनको बचपन से लेके जवानी तक मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजार कर अपने काम का बनाया। आइए देखते हैं और फिर इससे हम अल्लाह की मदद से देखेंगे कि क्या खूबसूरत तरीका था जिसको अल्लाह के नबियों ने अपनी ज़िंदगी में इख्तियार किया। और वक्त के फिरौन, वक्त के जो बड़े बड़े जालिम हुक्मरान थे, उनसे न दबे और न उनके आगे झुके। और नतीजा क्या हुआ वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इसको पढ़ना और सुनना आसान कर दे। आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ने के दौरान अपने ऊपर महसूस करेंगे, उतना ही इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। चलिए सूरह तौहा 1 से 24, रुकू नंबर 1, कुरान जिंदगी को आसान बनाता है। तौहा, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नहीं उतारा कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। इसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने जमीन को और बुलंद आसमान को पैदा किया, जो रहमान है, अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमान और जमीन और इन दोनों के दरमियान और कुर्रे खाक के नीचे की हर एक चीज पर है। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो तो हर एक पोशीदा, बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर बात को भी बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं। तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मालूम है, जबकि इसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम जरा सी देर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि मैं इसमें कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या आग के पास से रास्ते की इत्तला ले लूं। नोट कीजिए, पैगम्बरों का तरीका घर वालों का ख्याल रखना। बेगम को नहीं कहा कि आप जाइए देख के आइए उधर क्या हो रहा। तो अच्छे मर्द अपनी बीवियों और अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, और इसमें अलहमदिल्ला इंडो पाक कल्चर के औरतें और मर्द पास हैं। एटलीस्ट फर्स्ट ना भी आएंगे तो बहुत पोजीशन होल्डर हैं। औरतें भी बहुत मेहनत करती हैं, मर्द भी, क्योंकि उन्होंने शुरू से यही रवादारियां देखी। अब क्या हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, जब वहां पहुंचे तो आपको बिल्कुल आंखों से ऐसे लग रहा होगा कि आप वहां खड़े हैं और आपके साथ इस सारा मामला हो रहा जिसको मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे। क्या जब वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई है, मूसा यकीनन मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, आप अपनी जूतियां उतार दीजिए क्योंकि आप तो पाक मैदाने तुवा में हैं और मैंने आपको मुंतखब कर लिया। अब जो वही की जाए इसे कान लगा कर सुनिए, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं, बस तू मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। नोट किया आपने, अकीम सलात अली जिक्री, क्यामत यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो इसने कोशिश की हो, बस अब इसके यकीन से तुझे कोई ऐसा शख्स न रोक दे जो इस पर ईमान न रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। ऐ मूसा, तेरे इस दाएं हाथ में क्या है? ऐसे नहीं लग रहा बातों में से बातें निकलती आ रही हैं और अल्लाह ताला उसको आपके मेरे सामने ला रहा है। जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, और भी इसमें मुझे बहुत से फायदे हैं। अल्लाह ने इतना तो नहीं पूछा, सीधा सा सवाल पूछा। आप मूसा बात बढ़ा रहे हैं, ईमान वाले को नमाज में इतना मजा आ रहा होता है कि वो लंबी से लंबी करता है, क्योंकि नमाज में हम अल्लाह से बातें करते हैं और कुरान में अल्लाह ताला हमसे बातें करता है। पता नहीं हमारा क्या हाल है, बड़ा तो नहीं टाल रहे होते हैं। फरमाया, मूसा इसे अपने हाथ से नीचे डाल दे। डालते ही वो सांप बनकर दौड़ने लगी। फरमाया, बेखौफ होकर इसको पकड़ ले। ये मोहब्बत के इम्तिहान है, जो फायदे की चीज थी का छोड़ दो और जो नुकसान की थी का पकड़ लो। यह समय ना बताना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और डरने की जरूरत नहीं, हम इसे इसी पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे और अपना हाथ बगल में डाल ले, वो तो सफेद चमकता हुआ होकर निकलेगा, लेकिन बगैर किसी ऐब और रोग के। ये दूसरा मुजजा है, ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तो फिरौन की तरफ जा, इसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। एक आयत है ईमान से मुतल्लिक, 16 तौहा, इसका पैगाम क्या है? दूसरों की ख्वाहिशात के लिए अपना ईमान नहीं गंवाना। हजरत मूसा की जिंदगी से चंद अमल के नुक्ते जो दिल की रजामंदी और खुशी से कुरान की तरफ आता है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को आसान बना देता है। फेथ इन एक्शन क्या है कि इबादत का हक अदा करने के लिए दिल का मुकम्मल झुकाव और जाहरी अदब अदाब का ख्याल भी रखना है। आगे है रुकू नंबर 2, 25 से 54, 25 to 54, दुआ कुर्बे इलाही का जरिया। काल रब्बि शराह ली सदरी व यस्सर ली अमरी। मूसा अलैहि सलाम ने कहा है, मेरे परवरदिगार मेरा सीना खोल दे। आप भी अपने लिए मांगिए, मैं भी मांगती हूँ, और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिराह भी खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। चलिए मांगते हैं दुआ। रब्बि शराह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली आमीन। ये क्या मांगे आपने, आपको पता है? रब्बि शराह ली, मेरी जुबान खोल दे। याद रखिए, दावत देने वाला दाईये दीन सबसे पहले उसका अपना मजबूत होना जरूरी है। आप पढ़ाने गए, वहां टांगे कांप रही हैं, आप एडमिन बनकर बैठे हैं और आपको घबराहट हो रही है, तो सबसे पहले अपने लिए जज्बाती कुवत मांगते हैं। कुवते बर्दाश्त बेहतर हो जाए और मेरा अपना दिल जुड़ जाए, मेरा अपना दिल जम जाए, और यस्सिर ली अमरी के काम आसान हो। काम कैसे आसान होंगे? आपके लिए खाना बनाना कैसे आसान हुआ है? पहली रोटी याद है, वो पाकिस्तान का नक्शा, इंडिया का नक्शा, फिर ये गोल गोल रोटियां कैसे बनी? किया तो लिखिए जुमला, काम आसान होते हैं करते करते। अभी आपको मुश्किल लग रहा है, सारे ही मुश्किल है, पढ़ना पढ़ाना सुनना एडमिन बनना ये करना वो करना, करते जाइए आसान होगा। अल्लाह के वादे बड़े सच्चे हैं। और आगे, वजल्ली वजीर मिन अहली, और मेरा वजीर मेरे कुंबे में से कर दे, यानी मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम। तो मेरी इससे कमर कस दे, भाई के साथ भाई को, एक अकेला दो ग्यारह, और इसे मेरा शरीके कार कर दे, वुस्सत कल्बी। ये है मूसा का ज़र्ब, खुले दिल वाले जो अपने लिए पसंद किया वही अपने भाई के लिए पसंद कर रहे हैं। हदीस भी यही है, आज हम तो लॉन का एक प्रिंट पहन लें तो अपनी उस फजीलत में किसी दूसरी दोस्त को ना पसंद करे शामिल कर। हाय, ये भी इसी बुटीक का जोड़ा पहन के आ गई जो मैंने पहना, ये खबर लीक कैसे हो गई, ये राज कैसे फाश हुआ? मैंने तो शादी से एक दिन पहले तक छुपाया हुआ, इसको कैसे पता? तो मेरे भी राज बड़े हैं, मेरे हाथ लंबे हैं। हम दुनिया में किसी को वो चीज देना नहीं चाहते जो हमें पता होती है। हम चाहते हैं हम बड़े हो जाए, मेरा नाम हो जाए, भाई किसी की चीज को अपने नाम से पेश कर दे। ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्ला। खुले दिल वाले होते हैं दीन का काम करने वाले। क्यों करें? ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह करें, अकेले में रातों में तेरे सामने तस्बीह करें, और लोगों के सामने जालिम जाबिर बादशाह के सामने जाकर तेरा नाम ले लें। ये है तस्बीह। और बकसरत तेरी याद करें, बेशक तो मैं खूब देखने भालने वाला है। जनाबे बारी ताला ने फरमाया, मूसा तेरे सारे सवालात पूरे कर दिए गए, यानी सारी दुआएं कबूल। अल्लाह इस वक्त हमारी और इन सब सुनने वालों की दुआओं को भी कबूल कर ले। अल्लाह हमें भी यही जुमला कह दे। और आप जरा सुनिए, मूसा को अल्लाह ने अपने काम का बनाने से पहले इन मराहिल से गुजारा। हमने तुझ पर एक बार और भी एहसान किया है, जबकि हमने तेरी माँ को वो इल्हाम किया जिसका जिक्र अब किया जा रहा है, कि तू उसे संदूक में रख बंद करके दरिया में छोड़ दे, बस दरिया इसे किनारे ला डालेगा और मेरा और खुद इसका दुश्मन उसे ले लेगा। और मैंने अपनी तरफ की खास मोहब्बत और मकबूलियत तुझ पर डाल दी। तीसरी दफ़ा ये लफ्ज़ आ रहा है इस बारे में, ताकि तेरी परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए। आज की माँ बच्चे को बेबी सिटिंग में नहीं डालती। मूसा की माँ का ईमान और ईमान की ताकत इतनी थी कि बच्चे को दरिया में डाल दिया। तो लिखिए ईमान की ताकत। आज की माँ को अपने ईमान को इस हद तक तो बढ़ाना है कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के कामों के लिए, अल्लाह के रास्तों के लिए बच्चों को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। क्या कहा, कैसे कहा? याद कर, जबकि तेरी बहन चल रही थी। अब यहाँ बहन का किरदार देखिए, क्योंकि माँ भी बच्चे से प्यार करती है ना, उसमें भी कुछ लालच होता है कि बुढ़ापे में काम आएगा, बहनों को भाइयों से कुछ नहीं चाहिए होता, लाजवाल मोहब्बत। ये कुरान आपको रिश्तों का तकद्दस सिखाता है। ये सारी बातें ज्यादा डिटेल से आने लगी हैं सूरत कसस में, लेकिन यहाँ बस हिंट्स दे के आगे जा रही हूँ। अपने भाइयों के लिए दुआ करें, अल्लाह हमारे भाइयों पर रहम फरमा, अल्लाह उनकी मुश्किल को दूर करे, अल्लाह जैसे तूने मूसा को फिरौन के घर से बचाया, हमारे भाइयों को हर शर से बचा, हर बीमारी से बचा, हर परेशानी से बचा, और गैब से उनकी मदद कर दे और उनको अपने काम का बना दे, जैसे मूसा को बनाया। क्या कह रही थी? कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं बताऊं, जो इसकी निगहबानी करे, इस तदबीर से हमने तुझे तेरी माँ के पास पहुंचाया, किसकी आंखें ठंडी रहें और वो गमगीन ना हो, और तूने एक शख्स को मार डाला, इस पर भी हमने तुझे गम से बचा लिया, गरज हमने तुझे अच्छी तरह से आजमा लिया, फिर तू कई साल तक मदियन के लोगों में ठहरा। पूरी सीरत है बिल तरतीब, यानी बिल्कुल क्रॉनिकल ऑर्डर के साथ मूसा की जिंदगी के वाकयात यहाँ पढ़ रहे हैं। फिर हमने तुझे अच्छी तरह आजमा लिया, फिर तू कई साल तक मदियन के लोगों में ठहरा रहा, फिर तकदीर इलाही के मुताबिक है मूसा तू आया, टेलर मेड बनाया तुझे अपना काम करने के लिए। लिखिए, अल्लाह किसी से अपना काम लेना चाहता है ना, तो पहले उसको तराशता है, खराशता है, उसकी तजकिया करता है, तरबिया करता है, उसको खूब तीर लगते हैं ताकि वो अल्लाह के काम का बन जाए। और मैंने तुझे खास अपनी जात के लिए पसंद करवा लिया, ए अल्लाह आज हमें भी अपने लिए पसंद कर ले, हमारी औलादों, हमारी नस्लों, हमारे भाई बहनों, हमारे प्यारों को अपने लिए चुन ले, उम्मत मुस्लिमा को उनका भूला हुआ सबक याद दिला, अल्लाह हमें भी अपने लिए चुन ले। अब तो अपने भाई समेत मेरी निशानियां हमराह लिए हुए जा, और खबरदार मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना, यानी ये नहीं कि कामों में इतना लगे कि नमाज भूल गई। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, इसने बड़ी सरकशी की है, इसे नरमी से समझाओ कि शायद वो समझ ले या डर जाए। फिरौन के सामने जा रहे हैं और नरमी से समझाओ, हम अपने मुसलमानों को हथौड़े मार के तबलीग करें, कैसे मानेंगे वो हमारी बात? लेकिन देखिए फिरौन फिर भी नहीं माना, मूसा की नरमी और 9 अजाबों का एक के बाद एक आना देख कर भी फिरौन को ईमान ना दे सका, क्योंकि मर्द नादान पे कलाम में दिल भरे बेअसर, जिन दिलों में तेल नहीं होता वो नहीं निकलता। दोनों ने कहा है हमारे रब, हमें खौफ है कि कहीं फिरौन हम पर कोई ज्यादती ना करे या अपनी सरकशी में बढ़ ना जाए। जवाब मिला के तुम बिल्कुल खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुनता और देखता रहूंगा। तुम इसके पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के पैगंबर हैं, तुम्हारे साथ बनी इसराइल को भेज दे और इनकी सजाओं को खत्म कर दे। दो मकसद थे मूसा के जो पूरे हो रहे हैं, हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और सलामती उसके लिए जो हिदायत का पाबंद हो जाए। अल्लाह हमें हिदायत का पाबंद कर दे, हमारी तरह वही की गई कि जो झुटलाए और रुगरदानी करे इसके लिए अजाब है। फिरौन ने पूछा है मूसा तुम दोनों का रब कौन है? अब देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन उठा रहा है, ऐसे फितने फैलाने वाले सवाल कि मूसा भड़क उठे, लेकिन मूसा ठंडे, क्योंकि इल्म के साथ हिल्म मांगी, हिल्म के बगैर इल्म जो होता है ना कुंद छुरी बना देते। ये जो हम दुआएं मांगते हैं ना उन दुआओं में ये दुआ क्या करें कि अल्लाह इल्म दे रहा है तो हिल्म भी दे। क्या कहा? तुम दोनों का रब कौन है? जवाब दिया कि हमारा रब वो है जिसने हर एक को इसकी खास सूरत शक्ल अनायत फरमाई, फिर राह सुझा दी। उसने कहा अच्छा ये तो बताओ अगले जमाने वालों का हाल क्या होना है? आज भी लोग ये सवाल करते हैं, वो मदर टीसा कहाँ जाएगी, वो हातिम ताई किधर जाएगा, वो फलां किधर जाएगा। भाई आपको अपनी फिक्र चाहिए, मुझे तो ये नहीं पता मैं किधर जाऊंगा। तो ये सवालात सवाल वो नहीं है कि जिनका जवाब दिया जाए। जवाब दिया कि इनका इल्म मेरे रब के पास किताब में मौजूद है, ना तो मेरा रब गलती करता है ना भूलता है, यानी इग्नोर ग्रेसफुली का अंदाज है मूसा का। इसी ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और इसी में तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए हैं, आसमान से पानी भी वही बरसाता है, फिर बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं। तुम खुद खाओ और अपने चौपाओं को भी चराओ, कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। सीखिए जरा मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ, पहली बात बड़े से बड़े फिरौन के सामने भी अदब नहीं छोड़ना, दीनदार बेअदब नहीं होता, गालियां नहीं देता, वो मिंबर पे खड़ा हो के ताने नहीं देता, बल्कि महज़ब अंदाज से बात करता है। मन पसंद को छोड़ देना और नापसंद को पकड़ लेना, अल्लाह के कहने पे मन पसंद चीज़ छोड़ देना और मन को पसंद ना हो उसको पकड़ लेना, इसी को हलाल और हराम कहते हैं। क्या सीखा? हिकमत समझ आए या ना, हुक्म मान लीजिए। मूसा ने अमली सबूत दिया, अंधेरी रात में हम सांप को पकड़ते और अपनी असा को छोड़ते, तो फिर आज छोड़िए वो सब नाफरमानी की चीजें जो आज हमें इस दुनिया में चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अल्लाह ताला पर अंधा एतमाद था मूसा का, आपके मेरे लिए अमल का नुक्ता, फेथ इन एक्शन, दुआओं को कबूलियत के यकीन से मांगना है। उदुल्लाह वन तुम मोकिनूना बिलइजाबा, मुश्किल हालात में अपनी तदबीरों के बाद मामला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। दावते हक के लिए जुबान नरम, मगर बात हक की हो, नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू, रस्म हो के बस्म हो, पाक दिलो पाक जू। अल्लाह हमें ऐसा मुबल्लिग बना दे। आगे रुकू नंबर 355 से 76, हजरत मूसा और फिरौन के दरमियान मुकालमा। इसमें भी तबलीग के और कह लीजिए दावा के बहुत से अमली नुकते हैं। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम, इस जमीन में से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में फिर लौट आएंगे और इसी से फिर दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा करेंगे। हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी इसने झुटलाया और इनकार कर दिया। कहने लगा है मूसा, क्या तू तो इसीलिए आया है कि हमें अपने जादू के जोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? हर दौर के फिरौनों को यही खतरा होता है सच्चे मुबल्लिगीन से। अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में इसी जैसा जादू जरूर लाएंगे, बस तुम्हारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर ले कि ना हम इसका खिलाफ करें और ना तू, साफ मैदान में मुकाबला हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है और यह कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएंगे। बस फिरौन लौट गया और इसने अपने हथकंडे जमा किए फिर आ गया। इस पे बहुत हदीस है कि अल्लाह कभी फासिकों से भी अपने दीन का काम ले लेता। फिरौन इतना सोशल मीडिया जमा कर लिया, मूसा बेचारे के इतने सब्सक्राइबर कहाँ थे कि वो आते और मूसा का मुकाबला जादूगरों से देखते? तो कभी अल्लाह आपसे दीन का काम ले तो तकबर में ना आइए, बस ये दुआ करें कि अल्लाह कबूल कर ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी शामत आ चुकी है, अल्लाह पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो कि तुम्हें अजाबों से मिलिया मेट कर दे। याद रखो वो कभी कामयाब ना होगा जिसने झूठी बात घड़ी। बस ये लोग आपस के मशवरों में मुख्तलिफ राय हो गए और छुप कर चुपके चुपके मशवरा करने लगे। ये होते हैं दरबारी खुशामदी किस्म के लोग जो अपने लीडरों को पटियां पढ़ाते हैं और फिर हक के खिलाफ उकसाते हैं। कहने लगे ये दोनों महज जादूगर हैं और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से बाहर निकाल दें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद कर दें। इसको भी हाईलाइट करें, तरीकत मुकम्मल मुस्लिम। हर दौर के कुहर को इस्लाम से यही खतरा रहा। ये 10 इंच का टुकड़ा जो चेहरे पर निकाब के तौर पर पड़ता है, ये भी लोगों को अपनी तहजीब का जवाल लगता है कि इनसे तो इस्लाम की बू आने लगी। आप पता है कि इस्पानिया में जब इस्लाम का जोर टूटा और लोगों ने उसको लिया, तो उन्होंने वॉशरूम्स और जो गुसल खाने थे ना वो गिरा दिए। कहते थे इससे मुसलमानों की खुशबू आती है, यानी कि वो तो नहीं नहाते ना हर वक्त हर दिन, तो उन्होंने कहा इनको ख़त्म कर दो। आज भी सारी जंग जो है ना वो इसी की है कि इस्लाम का कल्चर ना आ जाए। आपका मेरा काम वेस्ट में रहते भैया, दिखाइए फखर से दिखाइए। क्यों हलाल हराम में पढ़ते हैं, पर्दा है कि नहीं, निकाब है कि नहीं, हिजाब है कि नहीं? भाई निकाब करने से गुनाह तो नहीं है ना, इसको तो सोचे दूसरा देखे, तुम पहचाने जाओ कि तुम मुसलमान हो। अपना हाल उलिए इस्लाम का दिखाइए, अंदर कौन देखता है, वो तो अल्लाह के पास है। बाहर वाले लोग तो आपका मेरा जाहिर देखेंगे, तो इनको अपने मजहब के जाने का डर था। तो तुम भी अपना कोई दांव उठा ना रखो, फिर सफ बंदी करके आओ। डिसिप्लिन होते हैं ये लोग, इसीलिए कामयाब होते हैं। आप देख लें जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले गया। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे ये बातें करते जाते हैं अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ते हुए ऐसे लगता है जैसे हम खुद इस मंजर को देख रहे हैं। कहने लगे है मूसा, या तो पहले आप डालिए या हम डालने वाले बन जाए। ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छा कि आप लेडीज फर्स्ट और जेंट्स फर्स्ट और फुला फर्स्ट। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो, कॉन्फिडेंस है मुसलमान का। मैं पहले बता लूँ, मैं बाद में बता लूँ, मेरी बात सच्ची है, कुछ वक्त मैं पहले सुना दूँ वरना फिर मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। नहीं, हक हक होता है, जो भी जब भी सुनाते जब मौका मिल जाए। अब तो मूसा को ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ इनके जादू के जोर से दौड़ भाग रही हैं। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया। क्यों, इंसान थे, बशर थे। हमने फरमाया कुछ खौफ ना करो, यकीनन तुम ही गालिब और बरतर रहोगे और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे। कि इसने उनकी तमाम कारीगरी को निगल लिया, यानी वो बातिल खत्म हो जाएगा और हक आ जाएगा। उन्होंने जो कुछ बनाया ये जादूगरों के करतब है, और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। आप तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े, इसलिए कि तकबर नहीं था, मुस्तहसे नहीं थे। फिरौन ने भी देखा लेकिन उसको इस्लाम नहीं मिला क्योंकि वो मुतकबिर था। और पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। फिरौन कहने लगा, क्या मेरी इजाजत से पहले ही तुम ईमान ले आए? डिक्टेटरशिप थी, आमरियत। यकीनन यही तुम्हारा और वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है, अपने ही साथियों पे शक कर रहा है। सुन लो, मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे कटवा कर तुम सबको खजूर के तनों में सूली पर लटकवा दूंगा, और तुम्हें फिर पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि हम में से किसकी मार ज्यादा सख्त और देर पर टॉर्चर्स। धमकियां, ये आज की नहीं, ये माजी की और हाल और मुस्तकबिल की कहानी है, ऐसा ही होगा। उन्होंने जवाब दिया कि नामुमकिन है कि हम तुझे तरजीह दें इन दलीलों पर जो हमारे सामने आ चुकी हैं, और इस अल्लाह पर जिसने हमें पैदा किया है। अब तो तू जो कुछ करने वाला है कर गुजर, तू जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वो इसी दुनिया की जिंदगी में ही है। हम इस उम्मीद से अपने परवरदिगार पर ईमान लाए हैं कि वो हमारी खताएं माफ फरमा दे, हम भी तो करें। और खासकर जादूगरी का गुनाह जिस पर तूने हमें मजबूर किया है, अल्लाह ही बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है। बात यही है कि जो भी गुनाहगार बनकर अल्लाह के यहाँ हाजिर होगा, दुआ करिए सुनो, क्रिमिनल बन के ना जाए हम, उसके लिए दोजख है जहाँ ना मौत होगी ना जिंदगी। और जो भी इसके पास ईमानदार होकर हाजिर होगा और इसने अमाल भी नेक किए होंगे, उसके लिए बुलंदो बाला दर्जे हैं, हमेशा की वाली जन्नतें जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यही इनाम है हर उस शख्स का जो पाक है। अल्लाह हमें भी पाक कर दे। चार आयतें ईमान से मुतल्लिक, तौहा 70, ईमान वालों के लिए फितने भी नेमत बन जाते हैं, जैसे कि आज के दौर में भी हुए 9/11 के बाद जितने लोगों को अल्लाह ने हक दिखाया शायद इससे पहले नहीं दिखाया। तौहा 71, जिसे अल्लाह की मार्फत मिल जाए वो हर कीमत पर खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। क्या आप करते हैं अल्लाह के हवाले खुद को? 73 तौहा, फिक्रे आखिरत लग जाए तो बंदा खुद को अल्लाह के रास्ते में लगा देता है, दुआ कीजिए ये लग जाए। और 75 तौहा, बेहतरीन आमाल करने वाले मोमिन के लिए जन्नत के बेहतरीन दर्जात हैं। फेथ इन एक्शन, वक्त के फिरौनों के सामने भी हक पर डटे रहना है, नेक आमाल पर अच्छे बदले की उम्मीद रखनी है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। रुकू नंबर 4, 77 से 89, अल्लाह की मदद ईमान वालों से मशरूत है, यानी कंडीशनल है। तुम अपना काम करो फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। वलकद औहैना इला मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को ले चले और इनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना ले, फिर ना तुझे किसी के पकड़ने का खतरा हो ना डर। फिरौन ने अपने लश्करों समेत इनका ताकुब किया, फिर तो दरिया इन सब पर छा गया जैसा कि कुछ छा जाने वाला था। यानी डूबने को देखिए कैसे पॉजिटिव अंदाज में बयान किया, यानी का वो डूबेगा, दरिया छा गया, यानी हक कैसे ही गालिब होगा। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता न दिखाया। ऐ बनी इसराइल, देखो हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी। अल्लाह आज के मुसलमानों को भी दुश्मनों से निजात दे। और तुमसे कोहे तूर की दाई जानिब का वादा किया और तुम पर मनु सलवा उतारा, और तुम हमारी दी हुई पाकीज़ा रोजी खाओ। लफ्ज़ पाकीज़ा पे गौर कीजिएगा, और इसमें हद से आगे न बढ़ो वरना तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाए वो यकीनन तबाह हुआ। हाँ बेशक इन्हें बख्श देने वाला हूँ जो तौबा करें, ईमान लाएं और नेक आमाल करें और राह रास्त पर भी रहें। अल्लाह हमें इन सारी खूबियों से जोड़ दे। ऐ मूसा, तुझे अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज़ जल्दी ले आई? कहा कि वो लोग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं, और मैंने अब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। नमाज अगर लेट पढ़ते हैं तो वक्त पे पढ़े, ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। जहाँ दिल लगा होता है ना बंदा वक्त से पहले ही चला जाता है। अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दे। फरमाया, हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और इन्हें सामरी ने बहका दिया। बस मूसा अलैहिस्सलाम सब गजबनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे। शिर्क का सुनकर भी मोमिन को गुस्सा आता है, देखना तो दूर की बात, और कहने लगे कि मेरी कौम वालों, क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने नेक वादा ना किया था? क्या इसकी मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? बल्कि तुम्हारा इरादा ही यह है कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गज़ब नाजिल हो कि तुमने मेरे वादे के खिलाफ किया। उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादे के खिलाफ नहीं किया। पता चला कि वो भी मजबूर थे, बल्कि हम पर जेवरात कौम के जो बोझ लाद दिए गए थे इन्हें हमने डाल दिया, और इसी तरह सामरी ने भी डाल दिए। अल्लाह हमें आज के दौर के सामरियों से भी बचा ले। आप बताओ सामरी क्या होता है? समरा, ये पढ़ेंगे सूरत में जब मैं। किस्सा गोई, कहानी, ड्रामे, फिल्में, फिक्शन, ये सब सामरी है। फिर इसने लोगों के लिए बछड़ा निकाल खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत, जिसकी गायकी सी आवाज थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भीमा भूत है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गए, इंसान थे ना। क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते कि वो तो इनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता और ना इनके किसी बुरे भले का इख्तियार रखता है। अल्लाह भी मट्टी और पत्थर के बुतों के आगे बैठने वालों को ये बात सिखा दे, आवाज नहीं सुन सकते, जवाब कहाँ देंगे, और कब्रों से जाकर मांगने वालों को भी अल्लाह हिदायत अता करते। एक आयत ईमान से मुतल्लिक, 82 तौहा, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। फेथ इन एक्शन, हर गुनाह दूसरे गुनाह का रास्ता खोलता है। छोटे छोटे गुनाहों से भी बचना है, गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करके अपने अमाल की इसलाह करनी है। और रुकू नंबर 5, 97 और 4, कौम की आसमाइश, ये सारा कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक खूबसूरत अंदाज से हमारी दोहराई हो रही है। वलकद काल लहुम हारून, और हारून अलैहि सलाम ने इनसे पहले ही कह दिया था कि मेरी कौम वालों, इस बछड़े से सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है, तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह रहमान ही है, बस तुम सब मेरी ताबेदारी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि मूसा अलैहि सलाम की वापसी तक तो हम इसी के मुजावर बने बैठे रहेंगे, यानी जब उस्ताद आने वाले होंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, अभी हमें हमारी मर्जियां करने दीजिए। मूसा अलैहि सलाम कहने लगे, ऐ हारून, इन्हें गुमराह होता हुआ देखते हुए तुझे किस चीज ने रोका था कि तू मेरे पीछे ना आया? क्या तू भी मेरे फरमान का नाफरमान बन बैठा? हारून अलैहि सलाम ने कहा, मेरे माँ जाए बे भाई, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल ना खींच, मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप ये ना फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का इंतजार ना किया। मूसा अलैहि सलाम ने पूछा, सामरी तेरा क्या मामला? पता चला कि जिनको पीछे काम देकर आए उनसे पूछना भी चाहिए कि क्या हुआ, इसी से रिपोर्टिंग सिस्टम सारा सामने आता है। और मूसा अलैहि सलाम ने हारून चूके बड़े थे फिर भी पूछा, क्या पता चला कि जिम्मेदारियों के तयन में छोटा बड़ा नहीं होता? सामरी का जवाब सुनिए, इसने जवाब दिया, मुझे वो चीज दिखाई दी जो इन्हें नहीं दिखाई दी, मैंने कासिद इलाही के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली और उसे उसमें डाल दिया, इसी तरह मेरे दिल ने यह बात मेरे लिए बना दी। अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी यही सजा है कि तू कहता रहे कि मुझे ना छूना, और एक और भी वादा है तेरे साथ जो तुझसे हरगिज न टलेगा। और अब तू अपने इस माबूद को भी देख लेना जिसका इतकाफ किए हुए था कि हम इसे जला कर दरिया में रेजा रेजा उठाएंगे। यहाँ नोट कीजिए, कुफर की, जहालत की यादें, गुनाहों की यादें भी तोड़ दें, मिटा दें, ख़त्म कर दें कि कहीं दोबारा फिर उन गुनाहों को दिल न चाहने लगे। असल बात यही है कि तुम सब का माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ही है, इसके सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं, इसका इल्म तमाम चीज़ों पर हावी है। इसी तरह हम तेरे सामने पहले की गुजरी हुई वारदातें बयान फरमा रहे हैं। एकदम नबी सल्लम के साथ खिताब शुरू हो गया, किस्सा पूरा हुआ तो अब आगे अमल के नुक्ते, अब सूरत के अंत तक। और यकीनन हम तुझे अपने पास से नसीहत अता फरमा चुके, इससे जो मुंह फेर लेगा वो यकीनन कयामत के दिन अपना भारी बोझ लादे हुए होगा, जिसमें हमेशा रहेगा, और इनके लिए कयामत के दिन बहुत बड़ा बोझ है। कैसा है वो दिन जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा और गुनाहगारों को हम उस दिन दहशत की वजह से नीली पीली आंखों के साथ घेर लाएंगे। ब्लू आइस नहीं मुराद, बल्कि खौफ से आंखों का नीला होना। वो आपस में चुपके चुपके कह रहे होंगे कि हम तो दुनिया में सिर्फ 10 दिन ही रहे, जो कुछ वो कह रहे हैं इसकी हकीकत से हम बाखबर हैं। इनमें सबसे ज्यादा अच्छी राय वाला कह रहा होगा कि तुम सिर्फ एक ही दिन दुनिया में रहे, ये है दुनिया। वो कहते हैं ना कि दुनिया यौमन वलना फीहा सौमन, दुनिया एक दिन की है और उस एक दिन में हमारा रोजा, किससे? हराम से। और छुप कर रोजा भी रख लें। क्या सीखा? दुनिया में खुश होकर सब्र करने वालों को हमेशा की जन्नत मिलेगी। इतना बेनियाज होना कि अल्लाह जो तूने दिया इस पर शुक्र, और जो नहीं दिया उस पर भी शुक्र। कह के देखें एक बार, जो दिया उस पर शुक्र, जो नहीं दिया उस पर शुक्र, जो दे के ले लिया उस पर और भी शुक्र। ये है ईमान को बढ़ाने वाली चीज़। तो फेथ इन एक्शन, दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के लिए अपनी अबदी आखिरत को ख़राब नहीं करना। अब क़यामत की कुछ होना के बड़े ज़बरदस्त मनाजिर हैं, ज़रा देखिएगा। 105 से 115, रुकू नंबर 6, व यसलूनका निल जिबाल फकुल यन्सिबुहा रब्बी नस्फा, वो आपसे पहाड़ों की नस्बत सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि इन्हें मेरा रब रेजा रेजा करके उड़ा देगा। कितना कितना बड़ा धमाका होगा क़यामत का। और जमीन को बिल्कुल हमवार साफ मैदान करके छोड़ेगा, जिसमें तो ना तू कहीं मोड़ तोड़ देखेगा और ना ऊंच नीच, क्यों? ताकि कोई पीछे छूट ना जाए। जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे, जिसमें कोई कजी ना होगी, और अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाजें पस्त हो जाएंगी, सिवाय खुसर पुसर के तुझे कुछ भी सुनाई ना देगा। ऐसी आवाजें महसूस करिए, उस दिन सिफारिश कुछ काम ना आएगी, मगर जिसे रहमान हुक्म दे और इसकी बात को पसंद फरमाए, जो कुछ इनके आगे पीछे है इसे अल्लाह ही जानता है, मखलूक का इल्म इस पर हावी नहीं हो सकता। तमाम चेहरे उस जिंदा और कायम दायम और मुद्दबिर अल्लाह के सामने कमाले आजजी के साथ झुके हुए होंगे। यकीनन वो बर्बाद हुआ जिसने जुल्म लाद लिया, और जो नेक आमाल करे और ईमानदार भी हो तो इसे ना तो बेइंसाफी का खटका होगा और ना हक तलफी का। इसी तरह हमने तुझ पर अरबी में कुरान नाजिल फरमाया है और तरह तरह से इसमें डर का बयान सुनाया है, ताकि लोग परहेजगार बन जाएं या इनके दिल में सोच समझ तू पैदा करे। यख्शा का लफ्ज़ सूरत में बार बार आ रहा है, आप नोट कीजिएगा बाद में जब अरबी में ये बारा पढ़ेंगे। बस अल्लाह अली शान और सच्चा और हकीकी बादशाह, तू कुरान पढ़ने में जल्दी ना कर, इससे पहले कि तेरी तरफ जो वही की जाती है वो पूरी की जाए। हाँ, ये दुआ करके परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ा। चलिए दुआ मांगिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दे दिया था, लेकिन वो भूल गया और हमने इसमें कोई अज़र ना पाया। एक आयत ईमान से मुतल्लिक 112 दुआ, अपनी सलाहियत के मुताबिक काम कीजिए, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक नवाज देगा। तो फेथ इन एक्शन क्या है? कि इल्म हासिल करें और इल्म में बरकत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, जिन कामों का आगाज करें इनकी तकमील के लिए पूरी कोशिश करनी है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस दौरे कुरान को भी पूरा करके बाद में तफसीर कोर्सेज को भी पूरा करने वाला बना दे। आगे दीर्घ नंबर 7, 116 से 128, इंसान की जल्दबाजी। वइस कुलना लिल मलाइका, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने किया, उसने साफ इनकार कर दिया और कहा, और हमने कहा, आदम ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे तो तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि ना तो भूखा होता है ना नंगा, और ना तो यहाँ प्यासा होता है ना धूप की तकलीफ उठाता है, लेकिन शैतान उसे वस वसा। फीलिंग कीजिए, नाम के साथ क्या फीलर आता है कि कोई है जो विस्पर करे कान में। वस वसा डाला, कहने लगा, क्या मैं तुझे हमेशा की जिंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊं जो कि कभी पुरानी ना हो? धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। चुनाच इन दोनों ने इस दरख्त से कुछ खा लिया, बस इनके सतर खुल गए। नोट करिए, माले हराम का लाजमी नतीजा है कि हया खत्म हो जाती है, कपड़े मुख्तसर हो जाते हैं और बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर टांकने लगे। फितरत की पुकार को पीछे नहीं किया आदम और हव्वा ने, आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस बहक गया। फिर इसके रब ने नवाजा, फिर इसकी तौबा कबूल की और उसकी रहनुमाई की। अल्लाह आज हमें भी पिछले सारे गुनाहों से पाक कर दे और आइंदा के लिए हिदायत दे दे। फरमाए, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे तो ना वो बहकेगा ना तकलीफ में पड़ेगा, और हाँ, जो मेरी याद से मुंह फेरेगा इसकी जिंदगी तंग ही रहेगी, और हम इसे रोजे क्यामत अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा, इलाही मुझे तूने अंधा बना कर क्यों उठाया? नोट करें, खुदा ना खास्ता को हमें पहले से बता दे कि अगले साल आप नबीना हो जाएंगी तो कैसा फील होगा? जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए था कि तू मेरी तरफ से आई हुई आयतों को भूल गया, तो आज तू भी भुला दिया जाता है। हम ऐसा ही बदला हर उस शख्स को दिया करते हैं जो हद से गुजर जाए और अपने रब की आयतों पर ईमान न लाए, और बेशक आखिरत का अजाब नहायत ही सख्त और बाकी रहने वाला है। क्या इनकी राहबरी इस बात ने भी ना की कि हमने इनसे पहले बहुत सी बस्तियां हलाक कर दी, जिनके रहने सहने की जगहों पर ये चल फिर रहे हैं? यकीनन इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत निशानियां हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ईमान से मुतल्लिक आयत 127 तौहा, अल्लाह की बंदगी की हदूद से निकलने वाले बेसुकून रहते हैं। कुछ अमल के नुक्ते इस रुकू में से देखते हैं। आज भी शैतान ने हमारे सामने दुनिया को उसी तरह खूबसूरत बनाया हुआ है जैसे पिछलों के लिए बनाया था। हमने इसके शर से बचना है। और वह मनार अदान सिक्री फाइन नलहु मई शतन का, आयत 124 तो हर साल तकरीबन थीम आया होती है इस बारे की। दुनिया की जिंदगी में भी तंगी, कब्र में भी तंगी, आखिरत में भी हसरतें। क्या आज इसका दूसरा नाम डिप्रेशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, सुसाइड नहीं? एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट जो है ये 2019 की है, आज से 5 साल पहले की। कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो डिप्रेशन की बातें हैं, नफसियाती जहनी बीमारियां हैं, ये सब देखें, और रिश्तों से मिठास खत्म हो गई, बेतमादी है, शोहर बीवी एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, इन सब का नतीजा क्या है कि 45% स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हैं। अपना बचपन याद करिए, केयर फ्री नहीं था, ना फिक्र ना फाका। आज के बच्चे डिप्रेशन में हैं। पहले 29 साल की उम्र में डिप्रेशन का मर्ज शुरू होता था, अब 14 साल की उम्र में के बच्चे को भी डिप्रेशन का मर्ज लाहक होता है। पिछले 50 सालों में खुदकुशी का रेट रेशो 60% बढ़ा है। आमतौर पे 15 साल से 45 यानी 15 से 45-50 की उम्र के लोग खुदकुशी करते हैं। हर साल तकरीबन 8 लाख लोग खुदकुशी करते हैं, अल्लाह अकबर, ये रजिस्टर्ड है। और जो हमारे अपने बैकवर्ड मुल्कों में कोई गोलियां खा ली, चूहे मार और ये कर ली खुदकुशी, वो इसमें नहीं आती। हर 40 सेकंड में एक खुदकुशी हो रही है। आपका मेरा ये क्लास का जो टाइम है ना, और आज तो थोड़ा एक्स्ट्रा गया, अल्लाह आपके लिए इसको सदका जारिया बना दे, आपको सदके का अजर दे दे। इस वक्त में आपको पता है 230 लोग खुदकुशी कर चुके हैं दुनिया में, जितने में आपने ये पारा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में और ये ऐसे मुल्क जो बैकवर्ड है उनमें कम रेशो है, और ज्यादा बड़े मुल्कों में ये ज्यादा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये है मईशतन का। औरतों को तंगी में डाल दिया मॉडर्निज्म के नाम पे, शादी अच्छी नहीं लगती, मर्द अच्छे लगते हैं। तो याद रखिएगा कि लिविंग टुगेदर है लेकिन शादी नहीं करनी, या इतने बोल बोल कर कह रही हैं लौट आओ पलट आओ इस किताब की तरफ। ये सारे फिगर्स एंड फैक्ट्स हमें बताते हैं क्या फेथ इन एक्शन है, कि शैतान के दो हथियारों दुनिया परस्ती और ख्वाहिश परस्ती से अपने आप को बचाना है। जिंदगी में सुकून और इत्मीनान के लिए अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। और 129 से 135 रुकू नंबर 8, सबर से जिंदगी आसान होती है, अल्लाह हमें सबर अता कर दे। वलौला कलिमतुन सबकत मिर रब्बिक, अगर तेरे रब की बात पहले से मुकर्रर शुदा और वक्ते मुआयन करदा पर ना होती तो इसी वक्त अजाब आ चिमटता। बस इनकी बातों पर सब्र कीजिए और अपने परवरदिगार की तस्बीह और तारीफ बयान करते रहिए, सूरज निकलने से पहले और इसके डूबने से पहले, रात के मुख्तलिफ वक्तों में भी और दिन के हिस्सों में भी तस्बीह करते रहिए। बहुत मुमकिन है क्या कि तू राजी हो जाए। नोट करिए, रब बाद में राजी होता है, बंदा पहले राजी होता है नमाजों से और दीन के कामों से। और अपनी निगाहें हरगिज इन चीज़ों की तरफ ना दौड़ाइए जो हमने इनमें से मुख्तलिफ लोगों को आरायशें दुनिया की दे रखी हैं, ताकि इन्हें इसमें आजमा लें। तेरे रब का दिया हुआ ही बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला। अल्लाह हमें नेमतों की आजमाइश से बचा ले। अपने घराने के लोगों पर नमाज की ताकीद रखिए और खुद भी इस पर जमे रहिए। बोलिए इंशाल्लाह करेंगे ऐसा काम। हम तुझसे रोजी नहीं मांगते बल्कि हम खुद तुझे रोजी देते हैं। आखिर में बोलबाला परहेजगारी का, यानी जॉब की वजह से अपनी नमाजें जाया ना कीजिए। उन्होंने कहा, ये नबी हमारे पास अपने परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाया? क्या इनके पास अगली किताबों की वाज़े दलील नहीं पहुंची? और हम इससे पहले ही इन्हें अजाब से हलाक कर देते तो यकीनन ये कह उठते कि हमारे परवरदिगार तूने हमारे पास अपना रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते इससे पहले कि हम जलील और रुसवा होते। कह दीजिए, हर एक अंजाम का मंतजर है, बस तुम भी इंतजार में रहो। अभी अभी कतन जान लोगे कि राह रास वाले कौन है और कौन हिदायत याफ्ता है। शुरू में कुरान का जिक्र, तौहा मांजल ना हाजल कुरान अली तशका, और आखिर में कुरान से मुतल्लिक दो किस्म के रवैये रखने वाले लोगों का जिक्र है। लाअल्लक तरदा का लफ्ज़ क्या बताता है? अल्लाह की इबादत करना अल्लाह की नहीं हमारी जरूरत है। अल्लाह बाद में खुश होगा, हम पहले होते हैं। इक्वेलिटी ने हर एक को दूसरे के सामने खड़ा किया हुआ है और अपने आप को हकूक लेते देते एक दूसरे के। आज देखिए माँ बाप के मुकाबले पे औलादें खड़ी हैं। आज बताए आपको, बच्चे एक ने मुकदमा किया अपने माँ बाप पे, पूछेगा नहीं कहाँ की बात है कि आपने मुझे पैदा क्यों किया। वो कहाँ आपकी खिदमत करेंगे, वो कहाँ रब इरहमहुमा की बातें करेंगे। आपको मैं बहुत थोड़ा बताती, जितना ज्यादा इस वक्त बाहर का शहर, इक्वालिटी बराबर, कैसे बराबर नहीं ना करते पैदा। बेटी ने माँ को कहा, इट वॉज योर फन, आपका फन था, आपने क्यों पैदा किया मैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, तो कहिए जो ना खूब था वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। डोंट फॉलो सेलिब्रिटीज, ये जो अल्लाह ने कहा ना कि उनकी आंखों ना उधर लगा दो, तो लामा इकबाल का वो दर्द, उस पे आज के पारे को अगर हम समझें, जवानों को मेरी आहे सहर दे, यानी ये जो सहरियों के वक्त बैठ के मेरे दिल से आहें निकलती है ना, ये मेरे इस उम्मत के जवानों को लगा दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों भर दे। खुदा यार सु मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, फेथ इन एक्शन, खुद को और अपने घर वालों को नमाज का पाबंद बनाना, दूसरों की जिंदगी से मरूब होने की बजाय अपनी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र गुजार होना है, और ईमान को बढ़ाना है। ईमान की शाखों में आज 31 नंबर है, कफारे की अदायगी वाजिब है। कभी कोई ऐसा काम हो जाए जिस पे कफारा है तो वो देना होता है। चार किस्म के कफारे हैं शरीयत में, किताब व सुन्नत के अंदर कसम का कफारा, सेवन पारे के शुरू में हमने पढ़ा सूरत मायदा में, कफारे कत्ल है, ये भी सूरत मायदा में पढ़ा, कफारे सिहार है, ये आप सूरत मजादिला में पढ़ेंगे, और रोजे का कफारा है, ये भी सूरत बकरा में पढ़ा। कोई मन्नत या कसम पूरी ना कर सके तो कफारा देना होता है। कसम का कफारा क्या है, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, 10 को कपड़े या दे दें, या गुलाम आजाद करें, ये सब कंडीशनल है, इसके अंदर डिटेल्स हैं। अगर ये सब ना कर सकें तो 3 रोजे रखने, और मुख्तलिफ किस्म के कफारों में कत्ल का कफारा, जिहार का कफारा, रोजे का जो किफारा है, कुरान ने इसकी डिटेल समय दी है। अल्लाह करे कि जब अल्लाह के पास जाएं तो हमारे सर पे कोई बोझ ना हो अल्लाह का। और ईमान की अगली शाख 32 माशाल्लाह हो गई, आधी हो रही है ऑलमोस्ट आज। वादा पूरा करना, मोहते पूरे करना, किसी चीज की हिफाजत करने के मिसल है, किसी को पनाह में लेना, जिम्मेदारियां पूरी करनी, कर्ज लिया है तो वक्त पे अदा कीजिए। सूरह फ़ात 10 में अल्लाह ने कहा, यानी जो इस अहद को वफा करेगा, जो उसको अल्लाह ने उससे किया है, तो अन करीब उसको अजर मिलेगा। बंदे का अल्लाह से अहद क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदे का अपने नफ्स से अहद क्या है, कि मैं अपने आप को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने वाले काम करूंगी। और बंदों के दूसरे बंदों से अहद तो सारा वक्त ही बंधते हैं, निकाह भी एक अहद है, कमिटमेंट्स भी अहद हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, 4 आते हैं ऐसी हैं जिसमें ये चारों होंगी, वो मुनाफिक है और उनमें से एक वादों को खिलाफ करना। मुस्लिम की रिवायत 210 है। तो फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। आज की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन कल्बिल ला यख्शऊ व मिन नफ्सिल ला तशबऊ व मिन इल्मिल ला यनफऊ व दावतिल ला युस्तजाबु लहा। आज के एक्स्ट्रा टाइम को अल्लाह ताला आप सब के हक में सदका बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।